ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत नई दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली पार्क में विशेष पौधरोपण अभियान का नेतृत्व करेंगे। ये अभियान महत्वाकांक्षी अरावली हरित दीवार परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य 700 किलोमीटर लंबी अरावली श्रृंखला पर फिर से वनरोपण करना है। अरावली हरित दीवार परियोजना का लक्ष्य दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के 29 जिलों में अरावली पहाड़ियों के आसपास 5 किलोमीटर का बफर जोन बनाना है। प्रधानमंत्री दिल्ली सरकार की स्वच्छ परिवहन पहल के रूप में 200 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रकृति और पृथ्वी के संरक्षण के प्रति दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस का विषय है प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना। भारत के दो और ऐतिहासिक स्थलों को रामसर धरोहर स्थलों की सूची में शामिल होने पर प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण में भारत की निरंतर प्रगति की सराहना की है। राजस्थान के फलौदी में खीचन और उदयपुर में मेनार वेडलैंड्स को रामसर स्थलों की प्रतिष्ठित सूची में जोड़ा गया है। इसके साथ ही भारत में अब कुल 91 रामसर स्थल हो गए हैं। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा। इससे पहले विपक्षी दलों ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये जानकारी दी।
मानसून सेशन का तिथि हमने तय किया है। हम राष्ट्रपति जी को प्रपोजल भेजेंगे समन करने के लिए 21 जुलाई से 12 अगस्त तक मानसून सेशन को चलाने का हमने डेट तय किया है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला संसद सत्र होगा। सरकार ने वर्ष 2027 में दो चरणों में जनगणना कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही जाति गणना भी की जाएगी। जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 होगी।
जनगणना से संबंधित अधिसूचना इस महीने की 16 तारीख को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की संभावना है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे पहले यह जनगणना 2021 में दो चरणों में आयोजित होनी थी, लेकिन देश भर में कोविड महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना का काम स्थगित करना पड़ा था। जनगणना के आधार पर सरकार को लोगों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए बेहतर नीति बनाने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
पिछली जनगणना वर्ष 2011 में दो चरणों में की गई थी। सरकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने के लिए राजनीतिक सहमति बनाने का प्रयास कर रही है। कुछ महीने पहले न्यायमूर्ति वर्मा के नई दिल्ली स्थित सरकारी आवास से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई थी। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि न्यायपालिका या कहीं भी भ्रष्टाचार पर राष्ट्र के हित में चर्चा होनी चाहिए। भारत ने एशियाई विकास बैंक की पाकिस्तान की दी गई किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता के दुरुपयोग की संभावना व्यक्त की है। भारत ने पाकिस्तान के बढ़ते रक्षा व्यय, कर और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के घटते अनुपात तथा प्रमुख व्यापक आर्थिक सुधारों पर स्पष्ट प्रगति की कमी के मद्देनजर बैंक के संसाधनों के संभावित दुरुपयोग पर गहरी चिंता व्यक्त की है। नागर विमानन मंत्रालय ने टर्किश एयरलाइन को नागर विमानन महानिदेशालय के निर्देशों और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मानकों पर अनुशंसित प्रथाओं का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने को कहा है। महानिदेशालय के निरीक्षण के दौरान इन निर्देशों का पालन न किए जाने की बात सामने आई। भारत को वर्ष 2026 से 2028 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने जबरदस्त समर्थन और भारत पर भरोसा प्रकट करने के लिए सदस्य देशों को धन्यवाद दिया। सिक्किम में मनगन जिले के भूस्खलन प्रभावित लाचेन क्षेत्र में सड़क संचार बहाल करने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। मनगन के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि फंसे हुए पर्यटकों को निकालने के लिए विभिन्न एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में कल आईपीएल विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के सम्मान समारोह के दौरान भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।